भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मयात ज्ञान श्रेयान द्रव्य मयम ज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि द्रव्य यज्ञ का फल द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब पंच महाभूत का बना होता है। सो जो चीज जो है पंच महाभूत की फल की बनी हुई है वो क्या है? विकारी है, विनाशी है। और ज्ञान यज्ञ का फल क्या है? नित्य ब्रह्म है। तो ब्रह्म का विनारी और विकासी है? विकारी नहीं। ब्रह्म विकारी भी नहीं है, विनाशी भी नहीं है। तो किसका फल अच्छा है? ज्ञान यज्ञ का फल अच्छा है। कौन सा यज्ञ करना चाहिए?
ज्ञान यज्ञ।
मगर ज्ञान यज्ञ के पहले द्रव्यमय यज्ञ करने पड़ते हैं ताकि मन शुद्ध हो। हम लोगों ने 12 किस्म के यज्ञ देखे थे। सब यज्ञ का एक ही फल है कि मन की शुद्धि होगी। मन जब शुद्ध होगा उसके बाद में आपका ज्ञान बैठेगा उसमें। श्रेयान द्रव्यमयात ज्ञान यज्ञ परंतप। तो ज्ञान यज्ञ जो है बेहतर है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ है ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम सर्वम का क्या मतलब बताया था हमने? सर्वम कर्म अखिलम। सर्वम का एक मतलब था, अखिलम का एक दूसरा मतलब था। कर्म माने कर्म। सर्वम का मतलब था जितना कर्म कांड है। अखिलम का मतलब है उपासना कांड। तो जितने भी आप कर्म करते हो, कर्म कांड के रिचुअल्स करते हो या अखिलम उपासना कांड करते हो, उनका अल्टीमेट क्या होता है? ज्ञाने परिसमाप्यते। ये दोनों करने से आप ज्ञान के योग्य बन जाते हो। कर्म कांड करने से चित्त शुद्धि, उपासना कांड करने से चित्त एकाग्रता। जब चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता हो जाती है तब आप ज्ञान के अधिकारी बनते हो। हुआ? ये विज्ञान है, ये साइंस है, इसको पकड़ना होगा आपको। ये करना होगा तब इसके बाद ऐसे 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 घटता जाएगा। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? हमने कर्म कांड कर लिया, हमने उपासना कर ली, हमने कर्म योग कर लिया, मन शुद्ध हो गया, तो काम क्या इतना ही है? केवल हमारी ड्यूटी क्या केवल मन शुद्ध करने तक है? नहीं, उसके बाद हमको ज्ञान लेना है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बोलते हैं तद्विद्धि। तद्विद्धि मतलब उसको जानो, ज्ञान को जानो। कहाँ जानो, कैसे जानो? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन आप जाके पहले गुरु के पास में सरेंडर करो, दंडवत सरेंडर करो कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। परिप्रश्नेन आपने जीवन का जो भी आपका अनुभव है, क्या अनुभव है? अनुभव ये है कि हमको संसार में आज तक हमको नित्य सुख नहीं मिला, इसलिए हमको कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें नित्य सुख मिले। तो नित्य सुख कहाँ से मिलेगा? अनित्य वस्तुओं से मिलेगा क्या? नहीं, नित्य सुख आपको नित्य वस्तु से मिलेगा। और नित्य वस्तु कितनी है?
एक।
नित्य वस्तु एक है। तो गुरु आपको उस नित्य वस्तु का ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? स्पिरिचुअल प्रश्न होना चाहिए, सांसारिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारी नौकरी चली गई, एक नौकरी दिलवा दो, नहीं ऐसा नहीं। परिप्रश्न है ना, सेवया, सेवा करनी होगी। क्यों सेवा करनी होगी? आप लोग के मन में सबसे पहले प्रश्न उठता है सेवा करनी है। क्यों सेवा करें? क्यों करें? माइंड की ट्यूनिंग होती है। माइंड की ट्यूनिंग मतलब क्या? आप गुरु को समझने लगते हो, शिष्य गुरु शिष्य को समझने लगता है कि ये किस कैटेगरी का है। ये आलसी व्यक्ति है? अगर आलसी व्यक्ति है तो उसको बोलेगा गार्डन में जाकर काम करो, जाओ। जो चुप से बैठा है उसको तो पहले तामसिक आदमी को राजसिक बनाना है, तो उसकी साधना वहां से स्टार्ट होगी। कोई उससे बेहतर आदमी है तो उसको फिर दूसरी उपासना देंगे। मन शुद्ध हो गया, चलो तुम जप करना शुरू करो या तुम ध्यान करना शुरू करो। मैं सब जो आते हैं बोलते हैं हमको ध्यान में सीधा बैठा दो, और ध्यान में फिर वो अपने सारे दिन की दिनचर्या बनाते रहते हैं, आज क्या क्या करना है। ध्यान खत्म होगा उसके बाद में क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, उसकी लिस्ट बनाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मन अभी तैयार नहीं हुआ, ध्यान के लिए तैयार नहीं हुआ है। सेवया, तो आप सेवा करोगे तब पता लगेगा। मैंने आपको बताया था एक प्रश्नोपनिषद है, उस प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य एक गुरु के पास गए और जाके सीधा ही प्रश्न कर दिया कि हमको आप आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्मन के बारे में बताइए। अब जो है गुरु को तो देखना है कि अधिकारी है कि नहीं है, तो उसने कहा कि आप पहले 12 महीने हमारे यहाँ आश्रम में सेवा करो, उसके बाद आप प्रश्न करना, मेरे को उत्तर आएगा तो मैं 12 महीने के बाद में आपको दूंगा। तो वो 6 शिष्य तो काम किए 12 महीने, आप लोगों में से कोई भी करेगा नहीं। अगर आपको गुरु ऐसा बोले कि 12 महीने के बाद में प्रश्न करना, अगर मेरे को उत्तर आएगा तब मैं उत्तर दूंगा, आप में से कोई भी उस आश्रम में काम करने को तैयार नहीं होगा। मगर उस प्रश्नोपनिषद में सब शिष्यों ने काम किया। सेवया उपदेक्षंती, उपदेक्षंती वर्ड जो है इसे फ्यूचर टेंस, फिर आपको वो ज्ञान देंगे। उपदेक्षंती फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि आप आए और तुरंत बोले हमको ज्ञान दे दो। अब नहीं दिए तो बोलेंगे आप गुरु को आता ही नहीं है, आता होता तो बता देता हमको। मगर गुरु उपदेक्षंती फ्यूचर ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, ज्ञानी न जिसको ज्ञान है। जिसको ज्ञान है मतलब क्या? स्वयं ज्ञानी नहीं होता है। स्वयं ज्ञानी मतलब अपने आप ज्ञानी नहीं बन सकते हम। क्या आप अपने आप डॉक्टर बन सकते हो बिना कॉलेज गए? इंजीनियर बन सकते हो? नहीं, आपको कॉलेज जाना होगा, डिग्री लेनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज में जाके आपको श्रवण करना है। देखो हर स्कूल और कॉलेज में शिक्षक जो हैं प्रोफेसर जो हैं बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही ज्ञान प्राप्त किया ना, तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक ज्ञान भी वैसे ही मिलेगा। कौन देगा? गुरु देगा। कौन सा गुरु? कहते हैं ज्ञानी न जिसने श्रोत्रिय, जिसने गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है। तत्वदर्शिन, तत्वदर्शिन का मतलब क्या हुआ? उस ज्ञान में वो निष्ठ है। निष्ठ है मतलब ही इज अबाइडिंग इन दैट नॉलेज। तो गुरु की दो क्वालिफिकेशन यहां बताई गई। पहली क्वालिफिकेशन है कि उसने गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है। देखो आप बस ज्ञान होगा तभी तो आप उसको सिखा सकते हो आगे। आप मैथ का टीचर हो, अगर उसको हम बोले कि लॉ पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। उसी तरह से ज्ञानी ना, तत्वदर्शी ना, जो उसके अंदर अबाइड करता है वो कर सकता है। यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, उसको जानने के बाद में ये पांडव ये अर्जुन फिर से मोह नहीं होता। अर्जुन को मोह हो गया था, क्या मोह था? उसका मोह था कि जगत सत्य है। उसको मोह हो गया था कि मैं इन सब लोगों को मारूंगा, मैं करता हूं, मैं इन लोगों को मारूंगा। वो भारी दुख उसको हो गया था और इतना दुख हो गया था कि ही वॉज इनकैपेबल टू एक्ट, रो के बैठ गया था। इनकैपेबल, धनुष नहीं उठा पा रहा था, ऐसा हालत हो गई उसकी। तो ये सब किस कारण हुआ? बोला मोह से हुआ है। और इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 18वें अध्याय में जाके अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह चला गया। तो मोह कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा। यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर से मोह नहीं आएगा। फिर और क्या होगा? येन भूतानि अशेषेन द्रक्षस्य आत्मनि यथा मई। दूसरी एक चीज होगा कि आप जितने भी भूत हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, उसको अपनी आत्मा में देखोगे, अपनी आत्मा में देखोगे और मई मेरे में देखोगे, तो दो चीज घटेगी। हम लोग सब जानते हैं ना कि ब्रह्मन के ऊपर में सारी दुनिया ऊपर में अध्यारोपित है। तो ब्रह्मन और आत्मा क्या है? दो तो नहीं है, एक ही है, एक है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरी आत्मा में सब कुछ है, या भगवान वसुदेव के अंदर सब कुछ है। तो भगवान वसुदेव और मैं क्या दो हूं? नहीं, हम दोनों एक ही हैं, एक ही चीज घटेगी। तो अपने के अंदर सारी दुनिया को देखना, सारे भूतों को देखना और भगवान के अंदर सारे भूतों को देखना एक बात है। फिर भगवान कहते हैं बहुत लोगों को ये एक शक हो जाता है, मैंने इतने जिंदगी में पाप किए हैं, क्या मैं ज्ञानी का अधिकारी बन सकता हूं? बहुत लोगों को ये प्रश्न होते हैं, मैंने इतने पाप किए हैं, आदमी मुंह से बोलता नहीं है मगर मन ही मन सोचता है मैंने ये गलतियां की हुई हैं पास्ट में, क्या मैं ज्ञान का अधिकारी हो सकता हूं? इस जन्म में नहीं होगा कुछ। भगवान कहते हैं अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, आपने ऐसा कोई पाप नहीं है दुनिया का जो नहीं किया है। आपने ब्राह्मण हत्या की है, गो हत्या की है, भ्रूण हत्या की है, जो भी हो सकता है, जितने कितने पाप हो सकते हैं सब पाप आपने किए हैं। फिर भी कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेन इव ब्रजिनम संतिरस्यसि, ज्ञान की नौका में बैठकर ब्रजिनम, जितने भी पाप का सागर है ना, जितना भी आप पाप किए हो सबको तो आप पार कर जाओगे। कौन सी नौका में बैठना है? ज्ञान की नौका में बैठना है। ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि मतलब अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कैसा है? करता है कि अकर्ता है? अकर्ता है। जिस दिन हम अकर्ता बन जाएंगे उस दिन क्या होगा? जो भी पाप हमने किए हैं वो मेरे नहीं है। क्यों? अब मैं तो जीव नहीं रहा, मैं तो ब्रह्म हो गया हूं। तो ब्रह्म हो जाने के बाद में जो भी पाप आपने पिछले जन्मों में किए हैं, अनंत कोटि जन्मों में किए हैं, वो सब के सब नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सर्वम 100% ज्ञान प्लवे नैव व्रजनम संतरस्यति, सब के सब खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? अभी नेक्स्ट श्लोक 37वां।
यथैधांसि समिद्योग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
यथा एधांसि समिद्ध अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुनः, यथा जैसे एधांसि, एधांसि मतलब ईंधन, फ्यूल, फ्यूल समिद्ध अग्नि, समिद्ध अग्नि मतलब प्रज्वलित अग्नि, एक अग्नि बहुत जोरों से जल रही है, तो वो अग्नि क्या करती है, उसके अंदर जो कुछ भी रहता है, उसके अंदर जो उसका फ्यूल कंटेंट है, ईंधन जो है, वो सबको सब जला देती है, सब का सब जला देती है। भस्म सात कुरते अर्जुन है, सब भस्म हो जाता है, जो मर्जी डाल दो अग्नि के अंदर में। अच्छा, यहां एक जो देखने की बात है कि उस जब प्रज्वलित अग्नि के अंदर में चाहे काठ सूखा हो चाहे भीजा काठ हो, सब जल जाएगा। कभी देखा है प्रयोग करके आपने? हम लोग के यहां अभी मिशन के अंदर एक कोने के अंदर सब लकड़ियां हम लोगों ने संभाल के रखी हैं, जब स्वामी जी आए थे सब ब्रांचेस काट कूट के सब एक जगह रखी है, वो सूख रही हैं। जब उसको जलाते हैं हम लोग तो जो सूखी लकड़ी है वो तो जल जाती है फटाफट, अगर उसमें से कोई नई ब्रांच को तोड़ के भी अगर हम डाल दें थोड़ी देर में वो भी जलने लगती है। तो लकड़ी चाहे सूखी हो या गीली हो, प्रज्वलित अग्नि के अंदर में सब भस्म हो जाते हैं। तो इतना डिटेल सूखी गीली करने का मतलब क्या है? सूखी गीली करने का मतलब है कि आपके कर्म परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते यथा, वैसे ही इस ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। कैसे भस्मय हुआ, क्या विज्ञान है पीछे में? विज्ञान यही है कि अब मैं करता नहीं रहा, इसलिए मैंने जो भी कर्म पीछे जन्म में किए हैं वो मैंने नहीं किए, ब्रह्म ने तो नहीं किए, अब मैं कौन हो गया ज्ञान के बाद में? अब मैं जेके नायर नहीं हूं, कौन हो? दुनिया पूछेगी नाम तो जेके नायर बोलेंगे, तब हम ये नहीं बोलेंगे मैं ब्रह्म हूं, लोग हंसेंगे फिर। व्यवहार के अंदर हमको क्या करना होगा, अपना नाम कहना होगा, मगर मन ही मन हम क्या जानते हैं, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो कौन हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म कैसा आया करता है, कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है, जो करेगा सो भरेगा, मैंने तो नहीं किया, मेरे को क्यों वो लोग पूछेंगे। तो ज्ञान अग्नि, देखो कर्म कैसे होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। एक संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म मतलब आप कर्म करते जाओ कर्म करते जाओ, वो आपका वहां डिपॉजिट होता जाता है एक जगह। कर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आज कर्म किया कल आपको उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप 30 दिन काम करते हो फिर वेतन मिलता है ना। या आपको भूख लगी है खाना खा लो, तुरंत फल मिल गया। प्यास लगी है, पानी पी लो, तुरंत फल मिल गया आपको। मगर एक आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिल जाएगा आपको तुरंत? नहीं। हमने टमाटर लगाए हैं, एक टमाटर नहीं आया, एक नहीं आया, फूल भी नहीं आए। अब टाइम आएगा तो आएंगे। कर्म तो हो गया ना, लगा दिया हमने, प्लांट कर दिया उसको, रोपण उसका हो गया, मगर फल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि काम करने के बाद में फल आने में समय लगता है। अब वो समय कितना होगा वो हमें नहीं मालूम है। वो खाना खाने की तरह तुरंत भी हो सकता है, या 100 जन्म के बाद, 1000 जन्म के बाद भी आ सकता है, ये आपको समझना है। तो उसको हम संचित कर्म कहते हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। उस संचित कर्म में से जितने कर्मों का फल पक गया है, उस फल को भोगने के लिए, चाहे वो खट्टा फल हो या मीठा फल, खट्टा फल मतलब दुख हो या मीठा फल सुख हो, उसको भोगने के लिए ये शरीर हमको दिया हुआ है भगवान ने, कि इस जीवन में, इस शरीर में आपने इतने कर्मों का सुख और इतने कर्मों का दुख आपको भोगना है, यह निर्धारित हो चुका है। ज्ञान जो है इसको कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान जो है प्रारब्ध कर्मों को, जिसके फल पक चुके हैं, जिसके लिए हमको भोगने के लिए शरीर मिला है, उस कर्मों को कुछ नहीं कर सकता, वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि ज्ञानी भी यह सफर करते हैं, दुखी होते हैं, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, और हम लोग संदेह करते हैं, अरे ये कैसा ज्ञानी है, है? ये अगर ज्ञानी है तो फिर ये अपने अपने शरीर को नहीं ठीक कर पाया। ज्ञानी है तो अपना शरीर ठीक करना चाहिए ना उसको अपने आप। और ज्ञान के बाद में आगामी कर्म, उसके फल भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ज्ञानी जानता मैं तो अकर्ता हूं, ज्ञान के बाद भी काम होते रहेंगे। जब तक शरीर है तब तक आप काम करते रहोगे, एक क्षण भी बिना काम के आप नहीं रह सकते, भगवान ने 3rd अध्याय में आगे बता दिया है। एक मोमेंट भी बिना आप कर्म के नहीं रह सकते, ज्ञान होने के बाद भी कर्म होता रहेगा, तो उन कर्मों का फल क्या होगा? तो उन कर्मों का फल ज्ञानी के पास नहीं आता है, किसके पास जाता है? जो उसकी सेवा करते हैं उसको उसका पुण्य मिलेगा, और जो उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, उसको दुख देते हैं ज्ञानी को, उसको क्या मिलेगा? ज्ञानी का दुख मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर ज्ञानी का दुख नहीं लेना है तो कम से कम उसकी निंदा तो मत करो, सेवा नहीं करना चाहते तो मत करो। मैं उसको निंदा क्यों कर रहे हो? उसकी निंदा करने से क्या मिलेगा आपको? उसके हिस्से के पाप आपको आएंगे। आप किसी महात्मा को अगर नहीं मानना चाहते तो मत मानो, उसकी निंदा मत करो, उसको दुख मत दो, दुख मत दो उसको। तो ज्ञान अग्नि से संचित कर्म गए, ज्ञान अग्नि से आगामी कर्म गए, क्योंकि मैं करता नहीं रहा। मगर जिन कर्मों का फल पक गया है, जिसके लिए हमको ये शरीर मिला है, आज हमें अगर ज्ञान हो भी जाता है तब भी इस शरीर को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी के जीवन में भी दुख, समझ गए विज्ञान पूरा एकदम, ज्ञानी के जीवन में भी दुख आएंगे। अब ज्ञानी की अपनी दृष्टि क्या है उसके प्रति? ज्ञानी सोचता है मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, शरीर भोग रहा है, भोगने दो, मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो ब्रह्मन हूं। अज्ञानी क्या सोचता है? अज्ञानी ज्ञानी के शरीर को देख के कहता है कि अरे ये तो दुखी है, ये तो दुखी है। ज्ञानी से पूछा आप दुखी हो? बोले ना मैं दुखी नहीं हूं, मेरा शरीर दुखी है, भोगने दो इसको हमको। सो ज्ञान अग्नि में सारे पाप और पुण्य खत्म हो जाते हैं। केवल पाप नहीं जाते हैं, पुण्य भी जाते हैं। आपने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं, आज ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों ही खत्म। कई बार आपके घर में महात्मा आते हैं तो आप आशीर्वाद मांगते हो। ऊंची कोटि का महात्मा अगर होगा ना तो आप बोलेगा कि आपके सारे पाप पुण्य मैं ले लेता हूं। तो आप बोलेंगे महात्मा जी आप पाप ले लो, पुण्य रहने दो, पुण्य तो सुख देते हैं। अरे पुण्य सुख देते हैं कि जो पुण्य इस जीवन में सुख देने वाला नहीं है अगले जीवन में सुख देगा। मान लो अगले जीवन में आपको गाय का रूप मिल गया, अब सुख क्या है? ग्रीन ग्रास मिल गई, दैट इज सुख। अब महात्मा कहता है तुम्हारे पुण्य भी मैं ले लेता हूं, हम दुखी होते हैं, मेरे पुण्य मत लो। पाप पुण्य लेने का मतलब आपका जो है और दूसरा जन्म ना हो, ये उसके पीछे भाव रहता है। अच्छा, जिसको ज्ञान नहीं मिला, जिसने ज्ञान नहीं लिया, जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उनका क्या होता है? तो ईशावास्य उपनिषद ने कहा असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसावृता। कहां जाते हैं? असूर्या नाम, वहां सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं मतलब रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं मतलब ज्ञान नहीं है, तो कहां है? अज्ञान है, तमसा, वहां तमस है, अंधकार है, ऐसे लोक में जाते हैं। और हम लोग को तो पता है कि आपको केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप निश्चित हो इस बात के कि नहीं? भगवान के पास में 84 लाख योनि हैं, मॉस्किटो भी उसमें है, खटमल भी है, मच्छर है, सब कुछ है। अब उसके अंदर क्या ज्ञान उनको होगा? कभी नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, कभी ज्ञान नहीं होगा, केवल जो है मनुष्य जीवन में होता है। अच्छा, भगवान कहते हैं ज्ञान की प्रशंसा करते हैं,
नहीं ज्ञानेन सदृशम,
नहीं ज्ञानेन सदृशम,
पवित्रम यह विद्यते,
पवित्रम यह विद्यते,
तत्स्वयं योगसंसिद्धः,
तत्स्वयं योगसंसिद्धः,
कालेनात्मनि विन्दति,
कालेनात्मनि विन्दति,
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धः, कालेनात्मनि विन्दति।
नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह मतलब यहां इस संसार में, इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है, कोई साधन नहीं है। ज्ञान ही सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अपरोच अनुभूति हो जाती है। किस चीज की अपरोच अनुभूति हो जाती है? कि मैं ब्रह्म हूं, इसकी अनुभूति हो जाती है। पर बाकी जो करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कर्म योग करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान देते हैं, इनका क्या होता है? मन शुद्ध होता है। बहुत अच्छा, इनसे जो है हम पाप के कार्य हटा सकते हैं। आपने कोई पाप किया, उसके बाद हमको किसी पंडित से पूछे कि मेरे से ये गलती हो गई है, कुछ आप बताइए, तो आपको एक पूजा बता देता है, पूजा कर लो आपका ये पाप कट जाएगा। तो पाप हट जाएंगे उसके अंदर में। क्या पाप करता हटता है? आपने एक कोई आपसे गलती हो गई, आपका उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, मैंने आपसे पांव के पांव से आपको छू दिया, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी बोल देते हैं ना, तुरंत प्रायश्चित कर लिया, सॉरी। आप साथ साथ कहते नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, हो गया हो गया। इससे क्या हुआ? जो गलती हुई वो गलती शुद्ध हो गई, मगर गलती करने वाला क्या गया? ईगो अहंकार आपका गया क्या उसमें? नहीं गया। मगर ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कर्ता को ही हटा देता है। देखो, आया आपको समझ में? बाकी जितने भी साधन हैं उससे क्या होता है, पाप कर्म जो हैं वो हट सकते हैं, मगर पाप करने वाला रह जाता है। अब आपको किसी ने कहा भाई आप जो है जाके गंगा में स्नान कर लो सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे मान्यता है, तो आप गए, आप गंगा में डुबकी लगाई, मान लो आपके पाप सारे खत्म भी हो गए, मगर पाप करता जो पाप करने वाला है नहाने के बाद में फिर वो रहेगा, फिर से पाप करेगा। मगर ज्ञान मिलने से क्या होता है? वो करता चला गया। इज इट नॉट सो? हम करता थे, अब क्या बन गए? अकर्ता। देखो, ज्ञान से आदमी अकर्ता में पहुंच जाता है। इसलिए ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। एक आदमी को किसी ने कुछ गलती की होगी, चोरी वोरी की होगी, उसको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, अच्छा 6 महीने जेल में रहोगे। अब वो 6 महीने 5 दिन के बाद में जेलर को समझ में याद आया कि अरे इसकी तो खत्म हो गई सजा, 5 दिन ये ज्यादा रह गया यहां पर, तो जेलर उसे माफी मांगता है कि देखो हमसे गलती हो गई भाई, तुम्हें 6 महीने रखना था, 6 महीने 5 दिन हो गए। तो बोलता क्यों घबराते हो साहब, 5 दिन नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेना। तो इसमें देखो, पाप किया था 6 महीने सजा हुई, अब वो सोचता है कि वो पाप करता उसका नहीं हटा सजा करने से बाद, वो बोलता फिर मैं करूंगा पाप, फिर आऊंगा आपके पास में, तो 5 दिन जो है हमारे वहां एडजस्ट कर लेना। आपको समझ में आया? पाप करता हटा नहीं, सजा देने के बाद भी पाप करता रह गया। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान इस अध्याय के अंदर में 24वें श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्म ओनली। सुनने वाला भी ब्रह्म है, बोलने वाला भी ब्रह्म है, टेबल भी ब्रह्म है, लाइट भी ब्रह्म है, बिल्डिंग भी ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्मन। आपको बताया था ना, जो चम्मच भी ब्रह्मन है, उसमें जो उसके अंदर सामग्री डाली है वो भी ब्रह्मन है, अग्नि भी ब्रह्मन है, करने वाला भी ब्रह्मन है। उस करने वाले का नाम क्या है? ब्रह्म कर्म समाधिना। उसको क्या मिलेगा? ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम, उसको ब्रह्म मिल जाएगा। ये ज्ञानी की दृष्टि है। और उसके बाद में आपको बताया था, अकर्तृत्व का ज्ञान ही ज्ञान है। अभी हम अपने आप को सभी कर्ता मानते हैं, 99.999% लोग सब अपने आप को कर्ता। एक केवल ज्ञानी होता है जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो अपने को अकर्ता मानता है। और कर्म अकर्म विकर्म जो तत्व हम लोगों ने देखे थे पीछे इसी अध्याय में, उसका भी तत्व क्या है? उसका तत्व ही अकर्ता, अपने आप को अकर्ता मानो। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अभी बताया, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्त होगा आप जब गुरु के पास में समर्पण करोगे, परिप्रश्न ज्ञान आपका समाप्त तब होगा जब आप आध्यात्मिक प्रश्न करोगे। आप दुनिया का प्रश्न करोगे तो ज्ञान तो नहीं आएगा। सेवया, आप सेवा करोगे तब आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का लाभ क्या है? ज्ञान का लाभ यहां बताया गया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते यथा, सारे कर्मों का नाश हो जाता है। कौन से कर्मों का? प्रारब्ध का, हाँ संचित और आगामी। आप जागे हुए हो। अच्छा, ज्ञान से क्या होता है? सिनर या कर्ता भाव खत्म हो जाता है। एक तो आगामी और संचित कर्म नष्ट हो गए ज्ञान से, उसके बाद में कर्ता सिनर जो है खत्म हो जाता है। दूसरे साधनों से क्या होता है? केवल पाप कर्म शुद्ध होते हैं। आपने एक गलती की, आपने चोरी की, आपको 6 महीने की सजा, उस चोरी का आपका समाधान हो गया, मगर चोरी करने वाला अभी भी जिंदा है, फिर जाके चोरी करेगा वो। अच्छा, कर्तृत्व रहने से क्या होगा? आप कर्म करते जाओगे, संचित कर्म आगामी कर्म बनते जाएंगे आपके, फिर आपको एक के बाद एक जन्म लेना पड़ेगा। अन्य साधन माइंड के लेवल पर काम करते हैं, ज्ञान कर्ता के लेवल पर काम करता है, वन नॉच लोअर है। अच्छा, अन्य साधना पाप के प्रायश्चित के लायक है, पाप का जैसे प्रायश्चित करते हैं अन्य साधन उसके बराबर है, और ज्ञान से पाप करता चला जाता है, पाप करने वाला ही खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? तत् स्वयं ही योग संसिद्ध काले न आत्मनिबिंदति, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग करने के बाद में जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, फिर क्या होता है? आत्मनिबिंदति काले न, टाइम पास हो गया, उसके बाद में आप अपनी आत्मा में उस ज्ञान को पा जाते हो। इन वेरी वेरी रेयर केस में भगवान आपको ज्ञान भीतर से दे देते हैं, वेरी वेरी रेयर केस में ज्ञान आपको बाहर से गुरु के पास के लेना है। मोस्ट ऑफ द केस ये नॉर्मल रूट है, मगर कई कई वेरी रेयर केस में ज्ञान जो है भीतर से भगवान दे देते हैं, भीतर से ही दे देते हैं। ज्ञान बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये मोह को खत्म करता है। हमारी जितने भी मिथ्या या गलतियां हैं उन सबको ठीक करता है। तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगेगा, जल्दबाजी नहीं कीजिए, मगर प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचोगे कि अब तो हो गया, गृहस्थ आश्रम खत्म होने जा रहा है, बच्चों को सेटल करना है, और तो काम मेरा है नहीं कुछ, इस जन्म में तो और होगा नहीं, क्या करें आप? तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर ये विज्ञान आपको समझ में आता है तो इसको लेके चलना शुरू कर दीजिए, चलना शुरू कर दीजिए। अगर मन शुद्ध, आप लोगों को मालूम है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर यहां रह जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? 17 आइटम है, 17 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 चीजें हैं। अगर ये 17 चीजों के अंदर अगर मन भी एक चीज है ना, उसमें अगर मन हमको अभी यहां जितना शुद्ध कर दिया, मान लो 100% ये गंदा था, हमने कर्म योग कर करके उसको 80% जो है गंदा है, 20% साफ कर दिया, तो नेक्स्ट जीवन में कितना कैसा जाएगा? वो 100% मैला जाएगा क्या? नहीं, अब 80% वाला मैला जाएगा। अब बताओ हमको इस मनुष्य जीवन में उसको शुद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मरने के एक दिन पहले, एक क्षण पहले भी अगर हम इतना सा शुद्ध कर लें तो भी उतना शुद्ध मन दूसरे शरीर में जाएगा। आया समझ में क्या है? तो कभी ये नहीं सोचो उम्र हो गई, इस लाइफ में नहीं कुछ होने वाला, और ऐसा नहीं है। प्रयत्न करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, और जैसे ही योग्यता आ जाती है और ज्ञान अपने आप अपने भीतर उत्पन्न हो जाता है, या आपको बाहर से भी लेना होगा। तो अगर और कुछ करना है क्या, भगवान बोलते थोड़ा सा और आपको समझना है और थोड़ा सा कुछ करना है, और क्या करना है?
श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तत्पर संयतेन्द्रियः,
तत्पर
संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम्,
ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम्,
अचिरेणाधिगच्छति,
अचिरेणाधिगच्छति,
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम्, अचिरेणाधिगच्छति।
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, तत्पर संयतेन्द्रियः, तीन चीजें भगवान ने यहां बताई। किसको ज्ञान मिलेगा? बोले श्रद्धावान, पहला क्वालिफिकेशन श्रद्धावान। उसके बाद तत्पर, तत्पर उसको पाने के लिए चेष्टा करनी होगी। श्रद्धावान तत्पर है। संयत इंद्रिय, इंद्रियां आपकी संयमित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपको चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर लभते ज्ञानम, संयत इंद्रिय लभते ज्ञानम। मगर सबसे पहले किसका नाम लिया? श्रद्धा का। तो श्रद्धा इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। अब श्रद्धा क्या है? देखो, श्रद्धा हर क्षेत्र में चाहिए। अगर स्कूल के अंदर आपको टीचर कहता है, शिक्षक कहता है कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, अब बच्चे जो स्कूल में बैठे हुए हैं उनकी अगर श्रद्धा है तब तो वो शिक्षक ने जो कहा वो मान लेंगे, मान लेंगे कि हाँ सबसे ऊंची चोटी, पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब किसी की श्रद्धा नहीं है, नहीं मानेंगे आप, आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो क्या होगा? परीक्षा में जब दे गया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? देखो, अश्रद्धा होने से क्या हुआ, और श्रद्धा रहने से उत्तर में क्या लिखेगा लड़का? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो उसको नंबर मिल जाएंगे, पास कर जाएगा। श्रद्धा देखो हर क्षेत्र में लगती है। अच्छा, हमारी यात्रा कहां से चलती है? अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है हमको, हमको श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा है क्या चीज? तो हमारे तत्वबोध में बताया गया है, गुरु एवं शास्त्र में, गुरु एवं वेदांत वाक्य में, वेदांत वाक्य आदि आदि में विश्वास है। श्रद्धा उसमें विश्वास होना चाहिए। किसमें? गुरु में और शास्त्र में। अब लोग कहते हैं कि गीता तो 5000 पहले साल में बताई गई थी, अभी तो इतना एडवांस हो गया है, अभी क्या गीता रेलिवेंट है क्या? ऐसे लोगों को सोचते हैं, तो उनकी श्रद्धा नहीं है। गुरु में श्रद्धा नहीं है। देखो, अगर हमारे आप इसके अंदर कभी हम लोग को बुखार हो जाता है तो क्या करते हैं, किस चीज का बुखार है तो ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके फिर वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो आपका माइक्रोस्कोप के अंदर श्रद्धा है कि वो देख पाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है? श्रद्धा है ना वहां पर, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर श्रद्धा है। मगर हमारी श्रद्धा गुरु में और शास्त्र में नहीं बनती, या ईश्वर में नहीं बनती। हमको विश्वास नहीं, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, कभी देखा तो नहीं है। लो, अब कोई एक आदमी कलर ब्लाइंड हो तो क्या वो रंग देख पाएगा? दूसरा आदमी उसको बताएगा, अरे ये लाल रंग है, क्योंकि उसको दिखाई पड़ता है। जो कलर ब्लाइंड है उसको नहीं दिखाई पड़ता है, दूसरे के ऊपर में निर्भर करना पड़ता है कि हाँ भाई आप बताओ क्या रंग है। उसी तरह से अगर हम, वो अज्ञान है तो हमको तो कहीं से कहीं से उसको लेना है ना, ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान किसके पास में है? एक तो गुरु के पास में है और एक शास्त्र के अंदर है। तो शास्त्र के अनुसार गुरु वो ज्ञान देता है। तो ये है क्या श्रद्धा? फेथ इज ए ट्रस्ट टिल डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। जब तक आपको पूरा सेल्फ का पता ना लग जाए तब तक श्रद्धा चाहिए। एकदम अंतिम स्टेप तक श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा गई तो आप पहुंच के एक स्टेप बाकी है, उसी के नीचे वापस आ जाओगे। श्रद्धा की कमी पड़ गई। देखो जब हम कर्म कांड करते हैं ना तो हमारी श्रद्धा होती है। जैसे भाई बहुत से लोग बोलते हैं स्वर्ग पाने के लिए कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स हैं, हमको स्वर्ग चाहिए, पंडित बोलेगा ये पूजा कर लो। अच्छा स्वर्ग क्या आप जीवित काल में देख सकते हो? स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा ना, मगर आप श्रद्धा है ना उसमें, उस कर्म कांड के अंदर आपकी श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है कि ये करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, मगर श्रद्धा है हमारी, हम कर्म कांड करते हैं। मगर ज्ञान कांड तो आपको यहीं पर आपको फल देने वाला, मरने के बाद नहीं। ज्ञान कांड का फल आपको जीवित रहते रहते मिलने वाला है, मगर उसके अंदर गुरु और शास्त्र का ऊपर आपका श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा की डिफिनीशन क्या है? तो यहां श्रद्धा की डिफिनीशन बताई गई है, गुरु उपविश्य शास्त्र अर्थे आस्तिक बुद्धि। गुरु उपविश्य, उपविश्य मतलब उसके नजदीक जाके बैठो, नजदीक बैठो तब आपको होगा। गुरु वेदांत वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा श्रद्धा। गुरु और वेदांत वाक्य के अंदर में आपको यह समझना है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो इसमें शास्त्र में लिखा है वो ठीक है, वो सच है, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो आपने कर्मयोग से मन तो आपने शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध करने के बाद में फिर आपको श्रद्धा चाहिए, क्योंकि अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ, अभी केवल मन शुद्ध हुआ है। ज्ञान कैसे मिलेगा? तत्परा लभते ज्ञानम। उसके बाद अप्रोच अनुभूति के लिए आपको गुरु के पास जाना है, गुरु के पास श्रवण करना है, तत्पर करना है, उसके लिए एफर्ट चाहिए, एफर्ट करना है। अच्छा कठोपनिषद ने कहा है कि जिसने इसका वर्ण किया उसको मिल जाता है। जिसने चाहा कि हमको आत्मदर्शन होना चाहिए, हमको आत्मज्ञान मिलना चाहिए, उसको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? 100% सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? अपने पास है। इसीलिए नानक ने कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन खोजा 100% जिन खोजा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर और पीएचडी डिग्री होल्डर। जिन खोजा तिन पाइया, उसको मिल गया। जिसने खोजा उसको मिल गया। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपके पास है। गहरे पानी पैठ, यू हैव टू डाइव डीप। आपको गहरे पानी के अंदर में जाना है। तो संयत इंद्रिय, तो तत्परता चाहिए कि हाँ मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध होने के बाद में ज्ञान प्राप्त करना है। तो पहला स्टेप क्या है? कर्मयोग करो। दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल यात्रा के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किसमें? श्रद्धा शास्त्र और गुरु में होनी चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है? तत्पर, सिंसियर एफर्ट करना होगा। ये नॉट सो, एफर्ट करने से तब आपको मिलेगा। चौथा स्टेप है संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयमन होना चाहिए। आगे जाके ये पीछे भी हमने देखा, इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन। तदस्य हरति हरति प्रज्ञां वायुर्नाभ इवां भवसी। इंद्रियां कैसी है? बोले इंद्रियां आपको किसी भी स्टेज में आपको गिरा सकती हैं, किसी स्टेज में भी आपको गिरा सकती हैं, विघ्न डाल सकती हैं। वासना और इंद्रियों के हिसाब से आप बहुत ऊंचे पहुंच गए, उसके बाद एक वासना आ गई, पट से गिर गए। ज्ञानम लब्धा परम शांति वचिरे न अधिगच्छति। अच्छा, ज्ञान से प्राप्त होने के बाद में फिर तत्काल रिजल्ट इमीडिएट है, इमीडिएटली आपको शांति मिल जाएगी। ज्ञानम लब्धा पराम शांति। अगर आपकी ऐसी भूल धारणा हो कि ज्ञान के बाद में मिलियन डॉलर मिलने वाला है, नहीं होगा। ज्ञानम लब्धा पराम शांति, आपको परम शांति मिलेगी, जो शांति आपको किसी भी दुकान की सेल्फ पर नहीं मिलती है। ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण, कोई देर नहीं है, इंस्टेंट, तुरंत तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये परम शांति क्या है? परम शांति ये है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई, आतंक दुख की निवृत्ति हो गई और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो अब ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया तो अब क्या है, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। दुख की निवृत्ति कैसे हुई? दुख की निवृत्ति आपकी इसलिए हो गई कि आपने जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं उससे आपने संबंध छेद कर लिया है। आप जान गए कि आप अनात्म वस्तु नहीं हो, आप आत्मा हो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, क्योंकि शरीर मन बुद्धि सब आत्मा है, शरीर मन बुद्धि सब अनात्मा है। मैं कौन हूं? मैं इससे भिन्न हूं। हालांकि हम रोज कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, अरे तेरे सिर में दर्द है तो इसका मतलब तुम शरीर से भिन्न हो ना, मेरी पुस्तक, तो पुस्तक क्या आपसे अलग है? कोई आदमी कहे मेरी भैंस, तो क्या यू बिकम भैंस? नहीं, भैंस तो हमसे डिफरेंट है, पुस्तक हमसे डिफरेंट है। मेरी भैंस कहते हो तब तो समझ में आता है भैंस हमसे डिफरेंट है। अब मेरा शरीर जब कहते हो, मेरा सिर कहते हो, फिर क्यों नहीं डिफरेंट समझ में आता है? सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? मेरा कुत्ता, हम, यू डोंट बिकम कुत्ता। मेरा शरीर, उसके टाइम बोलते नहीं शरीर मैं हूं, मन मैं हूं, ऐसा सोचते हैं हम। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान और मोक्ष में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई देर नहीं है, ज्ञान प्राप्त हुआ मुक्ति हो गई तुरंत। अच्छा, संशय न करें। संशय होने से क्या होता है? तो भगवान कहते हैं नहीं, किसे यह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा? तो यह भगवान अब कहने जा रहे हैं किस लोक को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। खाली वर्ड मीनिंग देख लेते हैं 40वां।
अज्ञश्च श्रद्धधानश्च,
अज्ञश्च श्रद्धधानश्च,
संशयात्मा विनश्यति,
संशयात्मा विनश्यति,
नायं लोकोस्ति नः परः,
नायं लोकोस्ति नः परः,
न सुखं संशयात्मनः,
न सुखं संशयात्मनः,
अज्ञश्च श्रद्धधानश्च, संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति नः परः, न सुखं संशयात्मनः।
अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी जो है, जिसको आत्मज्ञान नहीं का हुआ, अनात्मज्ञ, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अश्रद्धधानस्य, जिसको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धधानस्य, श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति। देखो, अज्ञ और अश्रद्धधानस का उसका तो नाश होता है, है? मगर संशयात्मा का विनश्यति, विशेष नाश हो जाता है। जिसको डाउट हो गया तो उसका क्या हो गया, नाश हो गया पूरा। अब आपको शास्त्र कहते हैं कर्मयोग करो, आपको डाउट हो गया तो आप कर्मयोग करोगे ना? हमको डाउट है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, क्यों खटे हम ऐसा कर। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। तो ऐसे लोग जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, अश्रद्धानस जिनकी श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा जिनको डाउट है, उन लोगों को बोलते हैं न अयम लोक, बोले इस लोक में भी नहीं, न पर यहां से जाने के बाद भी नहीं, सुख नहीं मिलता। सुखम न सुखम संशयात्मा, न उनको सुख नहीं मिलता। संशयात्मकों को या अज्ञ और अश्रद्धालु लोगों को सुख नहीं मिलता, न इस लोक में मिलता है और न आगे मिलता है। तो ये कैसे घटता है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये विज्ञान एकदम साफ साफ है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये नहीं होता है, इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगले दिन हम लोग इसके अंदर और तीन श्लोक हैं 40, 41, 42, इसको खत्म कर देंगे, ये अध्याय खत्म हो जाएगा। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
नेक्स्ट क्लास कब पढ़ रही है?
25 है।
एट अगस्त को हम लोग हैं।
नाइन्थ
इज फ्राइडे। ठीक है, नौ से हम लोग का रिट्रीट है ना।